के बीच में आदरणीय भ्राता राजू भाई उपस्थित हैं, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बारिश की बूंद जब गिरती है, उन बूंदों को अगर कोई हाथ में ले लेता है तो वो पानी पीने लायक होता है, है ना? अगर वो ऐसे ही जमीन पर गिर जाए तो पीने के कार्य में नहीं आती है। अगर पीना है तो फिल्टर करना पड़ता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है, दूसरे कामों में आ जाती है फिर भी। लेकिन अगर वो कीचड़ में गिर जाए तो वो काम भी नहीं आती, पैर धोने के भी काम नहीं आती। अगर वो कमल के फूल पर गिर जाए या घास में पड़ती है तो उसकी बूंद बन जाती है, लेकिन अगर वो सीप में गिर जाती है तो मोती बन जाती है। तो बात संग की है। राजू भाई, आपको जब से आपका ये आध्यात्मिक समर्पित जीवन प्रारंभ हुआ, कार्य कहो, सेवा कहो, ड्यूटी कहो या व्हाटएवर जो आप यहाँ आकर आज भी कर रहे हैं, 1976 से लेकर के कितने वर्ष हो गए, तब से लेकर के आप जो ड्यूटी बाबा की जो सेवा में आप निभा रहे हैं, जो कार्य क्षेत्र है आपका मुख्य रूप से, वो ऐसा कार्य क्षेत्र है जो व्यक्ति को मोती बना दे। प्रतिदिन ज्ञान रत्नों का मनन, चिंतन, मंथन, पढ़ना भी वही, लिखना भी वही, बांटना भी वही, ना सब कुछ वही। तो ज्ञान रत्नों के चिंतन अगर करते रहे करते रहे करते रहे तो क्या बन जाए, श्रेष्ठतम बन जाए ना। इसलिए आपका जो कार्य है, मुरली जो बाबा मुरली सुनाते हैं, आप लोगों ने शायद देखा होगा, व्यक्त बाप दादा भी जब आते हैं उस समय सबसे आगे डायमंड हॉल में देखा हो शायद, वहाँ लेफ्ट में ही आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर होता है और डायरेक्ट मुरली टाइप होती है, इसलिए तुरंत 12 बजे से पहले ईमेल्स के द्वारा सेंटर्स पर मिल जाती है। तो आपकी ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी सेवा है जो आप आज दिन तक भी करते रहते हैं। और जब आप बाबा के पास आए, आप आए तो 1972 में आपने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया ईश्वरीय कार्य में, लेकिन 1976 से, क्योंकि उन दिनों में यहाँ पर सिंधी मुरली चलती थी, दादियां सिंधी मुरली पढ़ती, आज भी दादियां सिंधी मुरली पढ़ती हैं, लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद आप करते थे। मुझे ये समझ में नहीं आया, वो बताएंगे आप ही, कि आप सिंधी से हिंदी में कैसे ट्रांसलेशन करते थे, क्योंकि आपकी तो मातृभाषा हिंदी है, लेकिन शायद सिंधी सीख ली होगी, तो सिंधी से हिंदी में मुरलियों का ट्रांसलेशन करना, उनको टाइप करना, और फिर वो, क्योंकि पहले हाथ से मुरलियां लिखी जाती थी, उसके बाद फिर जब टाइप करना शुरू किया, फिर वो मुरलियां कॉपीज कई सेंटर्स पर भेजी जाती थी, सेंटर्स बढ़ते गए, ये कारोबार बढ़ता गया। आजकल आप देखते हैं मुरली में सबसे ऊपर सार लिखा होता है, प्रश्न होता है, जो मुरली का मनन चिंतन करके उसको निकाला होता है, उसमें धारणा, वरदान, फिर स्लोगन। कुछ भाई बहन तो हम देखते हैं केवल इसी आधार पर मुरली, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता, इतना ही पढ़ करके मुरली को धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं, तो वो सेवा भी आप करते हैं। पत्र पुष्प जो मधुबन से आता है, उसमें जो अव्यक्त इशारे होते हैं, वो भी मुरलियों का मनन चिंतन मंथन करके, और बाबा ने जो कहा उनको संग्रह करके, ऐसी पूंछ निकाल करके, विषय बना करके, लिख करके, वो भी आप भेजते हैं। उसके अलावा कई ऐसे विषयों को लेकर बाबा ने जो स्पष्टीकरण किए हुए हैं, उनकी भी कुछ ऐसे संग्रहित पॉइंट्स हैं, उनकी बुक्स बनी हुई हैं, वो भी आप ही को वो सौभाग्य है वो करने का। मुख्यालय में बहुत सारे ऐसे पत्र आते हैं दादी के पास, तो उनके उत्तर लिखने होते हैं, उनके जवाब लिखने होते हैं, तो वो भी आपका ही कार्य है, और आप उनके उन पत्रों के जवाब दादी जी से राय करके देते हैं। तो इस प्रकार अनेक प्रकार से आप ईश्वरीय महावाक्यों में, उन रत्नों में सदा ही खेलते रहते हैं। हर आत्मा का अपना अपना सौभाग्य होता है, आपका अपना सौभाग्य है, जो कार्य ही ऐसा बाबा की तरफ से भी मिला हुआ है। और ग्राम विकास प्रभाग, हमारी बहुत सारी विंग्स हैं, सभी जानते हैं, और ग्राम विकास प्रभाग की अनेक प्रकार की सेवाएं आप करते हैं यहाँ मधुबन में बैठे और अनेक स्थानों पर जाकर के। उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और बहुत प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट चल रहा है, जो बहुत सक्सेसफुल भी है, वो है शाश्वत योगिक खेती, कि कैसे योग के द्वारा हम अनाज को भी, जो पैदावार होती है उसको भी कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। जिस तो उसका मुझे भी अनुभव है। एक बार यहाँ ही पालनपुर में एक हमारे मुंबई के भाई हैं, उनके खेत हैं वहाँ, तो उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ पर हम शाश्वत योगिक खेती का प्रयोग करते हैं। ये कई साल हो गए जब ये प्रोजेक्ट प्रारंभ ही हुआ था, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो कहा उसके वो उससे गेहूं निकला हुआ है, तो वो गेहूं आप ले जाएंगे बंबई? तो मैंने कहा इतना तो मैं नहीं ले जा पाऊंगी, लेकिन एक आध किलो दे दो मुझे, वो मैं ले जाऊंगी, मैं देखूंगी। क्योंकि वो वीट ग्रास, पता है ना आपको, बंबई में वीट ग्रास बहुत चल किसकी ये प्रचलन था, उन दिनों में शुरू हुआ था प्रचलन। वो गेहूं के दाने, कितने साल हो गए इस बात को, 10 साल से ज्यादा हो गए होंगे शायद, वो गेहूं के दाने आज भी मेरे पास एज इट इज पड़े हैं, बिना किसी मेडिसिन के। तो ये एक प्रूफ है कि कैसे, तो ये प्रोजेक्ट जो है ये ग्राम विकास प्रभाग ने उठाया है, तो कैसे योग हमें मदद करता है हर कार्य में। तो ऐसे कई अनुभव आपके पास है, ये तो मैं एक छोटी सी बात सुना रही हूँ, लेकिन आपके पास बहुत सारे अनुभव है, मुझे पता है आपके पास अनुभव है। एक तो बाबा के अंग संग रहे हैं, 1900 जब आपको ज्ञान मिला तब आप बहुत छोटी आयु थी आपकी, 1960 में ज्ञान मिला, यूपी से ही ज्ञान मिला, और वहां आपके घर में ही सारी ईश्वरीय कार्य की गतिविधियां शुरू हुई 60 में, तब से 4 वर्ष की आयु थी आपकी, तो बचपन से ही ज्ञान मिला। और 1971 में जब पहली बार मधुबन आए तो दिल किया कि मुझे यहाँ ही समर्पित हो जाना है, इसलिए फिर लौकिक परिवार से छुट्टी लेके 72 में यहाँ ही समर्पित हो गए। तो उनका आज का विषय है पुरुषार्थ के लिए कुछ गुप्त इशारे। तो मैंने जब कहा, अभी अभी मेरी बात हुई, तो कहा गुप्त इशारे क्या होते हैं, पुरुषार्थ के लिए तो सब जनरल में इशारे होते हैं। मैंने कहा नहीं, कुछ कुछ गुप्त भी होते हैं। कहते किसने, बाबा ने कोई गुप्त थोड़ी सुनाए हैं, लेकिन कुछ आत्माओं के पास होते हैं ऐसे गुप्त इशारे, ऐसा मैं मानती हूँ, जिनको बाबा टच करते हैं समय प्रति समय। लेकिन हम समझते हैं आपके पास अगर हैं तो आप तो शेयर करते ही रहते हैं। आज हमारा जयपुर राजा पार्क का जो ग्रुप आया है, आप हमारे साथ भी ये इशारे शेयर करें और हमें बताएं कि हम कैसे अपने पुरुषार्थ को ना केवल तीव्र करें, लेकिन पुरुषार्थ में हम सब उड़ने लगे। आदरणीय भ्राता राजू भाई जी,
ओम शांति। आप सभी बाबा के इस बेहद घर में तीव्र पुरुषार्थ करने के ही लक्ष्य से यहाँ पहुंचे हैं। वैसे तो बाबा ने कोई बात गुप्त नहीं रखी है। मैं यही बहन जी को कह रहा था कि गुप्त क्या है, कोई चीज गुप्त है क्या? कल भी साकार बाबा की मुरली सुन रहे थे, एक ही पुरुषार्थ है जो शुरू से अंत तक बाबा ने उसमें 50-60 साल कहे, कोई उसमें 3-4 मास में भी पास हो जाते हैं और कोई लास्ट तक वही पुरुषार्थ करते रहते हैं। कौन सा? कल की मुरली में था, देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहना एक मेहनत का कार्य भी है और सारे पुरुषार्थ का सार तो इसी में आ जाता है। क्योंकि जितनी भी विकृतियां आई हैं, विकारों की प्रवेशता हुई है, उसका मूल कारण तो देह अभिमान है। अब संगम समय पर थोड़े समय में हम सभी ये गुप्त पुरुषार्थ है, अंदर ही अंदर मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, इस देह भान से डिटैच हो जाएं। बाबा का एक गुप्त इशारा तो यही है कि जैसे आत्मा संपूर्ण पावन आई थी इस सृष्टि मंच पर अपने घर से जब आई थी और अब जाने का समय है, बीच में जो नाटक के अंदर हिसाब किताब बनाए हैं वो सब हिसाब किताब चुकता हूँ और आत्मा पावन बन करके वापस घर जाए, उसको सजाएं न खानी पड़े। अगर कुछ रह गया तो फिर बीच में धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। इसलिए बाबा का ये गुप्त इशारा ही कहें कि बच्चों को समय प्रसमय कई प्रकार की प्रेरणाएं देते हैं, कभी मुरलियों के माध्यम से, कभी क्लासेस के माध्यम से मिलती हैं, लेकिन जब विशेष योग अभ्यास करते हैं तो कुछ बातें टच होती हैं कि ये करना चाहिए, इस अनुसार हमें रेस करनी चाहिए, क्योंकि समय की सूचना तो बाबा समय प्रसमय देते आए हैं। और समय के साथ साथ हम सभी भी जानते हैं कि अचानक बहुत से खेल दुनिया में हो रहे हैं। समाचार तो आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं, दुनिया में आप रहते हैं, बहुत सारी कारोबार में रहते हैं, अचानक किसके साथ क्या क्या घट जाता है, उस समय तो बाबा की याद आए, उसी समय एक सेकेंड में वो देह से डिटैच हो जाए, जब पेपर आता है तो पता चलता है, और अचानक ही पेपर आ रहे हैं। तो बाबा हम सबको कहते हैं अचानक किसी भी प्रकार का, कभी कभी देह के हिसाब किताब आ जाते हैं, कोई न कोई ऐसी बीमारियां आ जाती, कभी संबंधों में आपस में जो बहुत स्नेह है, बहुत समीपता है, उसमें टकराव की स्थितियां पैदा हो जाती, कभी आर्थिक रूप में कोई ऐसी परीक्षाएं आ जाती, कभी आज की कलयुगी दुनिया में भटकती हुई आत्माएं कहीं न कहीं वार कर लेती, कोई ईर्ष्या के वश, बदला लेने के वश, कोई न कोई कारण से तंत्र मंत्र जंत्र के प्रयोग कर देते, बहुत सारे प्रकार की समस्याओं के बीच में हम सब चलते हुए उनको क्रॉस कर जाएं, कोई भी प्रभाव मुझ आत्मा पर न पड़े, उसके लिए आवश्यक है बहुत गुप्त पुरुषार्थ की। और बाबा अपने बच्चों को कहते हैं कि ये पुरुषार्थ करो कि मैं आत्मा एक लाइट के घेरे में हूं, आंख खुलते ही इस शरीर से डिटैच हो करके जैसे मैं आत्मा उत्तरित हुई हूं, इस शरीर में प्रवेश कर रही हूं, जैसे बाबा आते हैं प्रवेश होते हैं। तो शायद आप सबको बताया हो, अनुभव भी हुआ हो कि कि शिव बाबा अकेले नहीं आते हैं, ब्रह्मा बाबा को साथ लेकर के आते हैं। और ब्रह्मा बाबा को साथ ले आना माना, ब्रह्मा बाबा तो लाइट के शरीर में है, निराकार रूप में नहीं, अभी आकारी स्वरूप में है। और वो आकारी स्वरूप जब शिव बाबा उसमें प्रवेश होते हैं, अव्यक्त वतन, मुरलियों में बाबा कई बार कहते हैं कि जब मुझे सृष्टि की रचना करनी होती है, पुरानी सृष्टि को नया बनाना होता है, तो मैं पहले सूक्ष्म वतन की रचना करता हूँ, वो लाइट का वतन। संगम पर ही वतन का ज्ञान है और समझ है। तो जब परमात्मा को इस सृष्टि पर अवतरित होना होता है तो सूक्ष्म वतन की वो रचना करते हैं, जिसमें ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी दिखाई, जो एक बहुत प्रकाशमय एक लाइट की दुनिया है, लाइट का वतन है। और आत्माओं का जो संपूर्ण स्वरूप है वहाँ इमर्ज रहता है, यहाँ पुरुषार्थी स्वरूप है, वहाँ आत्मा का संपूर्ण स्वरूप है। तो जब शिव बाबा इस सृष्टि मंच पर आए साकार में, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, तो उस समय भी पहले ब्रह्मा के संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज करके उनके माध्यम से ही सृष्टि पर आए, डायरेक्ट नहीं। और अभी भी गुलजार दादी के तन में जब बाबा की प्रवेशता होती है तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का लाइट का शरीर लेकर के फिर आते हैं। और जो आत्माएं उस अव्यक्त स्थिति में सब सुबह से रात तक रहती हैं, इसलिए कहा जाता है कि अंतर्मुखी रहो, अव्यक्त स्थिति में रहो, तो अव्यक्त अवतरण का आपको अनुभव होगा। बहुत से बाबा के बच्चे ऐसे आते हैं जो इसी लक्ष्य आते हैं कि मैं बाबा को इन आंखों से देखूं कैसे आते हैं। निराकार तो दिखाई नहीं देता, आकार तो दिखाई दे सकता है ना, लेकिन उस आकार को भी देखने के लिए हमें भी उस आकारी ड्रेस में रहना पड़ेगा। तो जब हम सवेरे से रात तक बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं तो अचानक जब बाबा का अवतरण होता है तो अनुभव होता है कि वो डबल लाइट शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा आए और दादी के तन में जैसे चारों तरफ एक प्रकाश का ओरा बना और उस ओरे में प्रवेश किया। चेहरा बदल जाता है, हाव भाव बदल जाते हैं, और बहुत जो शुद्ध विचारों से उस भावनाओं से बैठते हैं उनको अनुभव होता है कि बाबा आ गए। क्योंकि वो प्रवेशता जो होती है, उन आत्माओं का आना तो आप समझते हो परेशान कर देते, शरीर हिल जाता है, क्योंकि वो अशुद्ध आत्माएं हैं, कोई कारण से आती हैं, प्रवेश होती हैं। और ये तो परम पवित्र आत्मा है, किसी बच्चे को कोई आत्मा को दुख न हो, परेशानी न हो, जब तक दादी जी का शरीर स्वस्थ था तब तक दादी जी को बाबा ट्रांस में भी बुलाता था, दादी को सुला के फिर प्रवेश करता था। और अभी कुछ समय से आप देख रहे हैं कि दादी जागृत रहती हैं, वो ट्रांस में नहीं जाती और शिव बाबा की प्रवेशता हो जाती, मुरली चलने लगती, रथ को कोई तकलीफ न हो। दिव्य शक्तियां हैं, पवित्र शक्तियां हैं, इसलिए बाबा का अवतरण जब होता है तो उसका अनुभव करने के लिए हमें भी उसी स्वरूप में स्थित होना पड़ता है। तो वर्तमान समय हम सबकी सुरक्षा के लिए, इस वायुमंडल में जो नेगेटिविटी है उससे अपनी सेफ्टी के लिए सबसे गुप्त इशारा है बाबा का कि बच्चे इस लाइट के शरीर में रहने का अभ्यास करो। आप सबने शायद कुछ अव्यक्त मुरलियों पर अच्छी स्टडी की हो, उसमें बाबा ने ये बात कई बार कही है कि अंतिम समय में जब बहुत इविल स्पिरिट्स के साथ साथ इविल आत्माएं जो साकार में हैं, एक है बिना शरीर वाली, एक है शरीर वाली, वो भी इविल है ना, तो वो आत्माएं जो इस सृष्टि मंच पर किसी कारण से किसी के सामने अटैक करने के लिए आती हैं, और अगर आप उस लाइट के शरीर में हैं, आत्मिक स्थिति का आपने अभ्यास किया है, तो ये आपकी ड्रेस जो है ये शरीर भूल जाए नहीं दिखाई देगा, वो आपके ऊपर सामना करने के लिए आएगी लेकिन ये गुम हो जाएगा और इसकी जगह पर उनको लाइट का शरीर दिखाई देगा। ब्रह्मा बाबा ने बहुत गहरा अभ्यास किया था, गुप्त अभ्यास था बाबा का, इसलिए बहुत निर्भय थे, बहुत निश्चिंत थे। सुना होगा एक बार, उस समय तो बहुत विरोध था शुरू शुरू में संस्था का, बाबा को मारने के लिए किसी ने कुछ सरदारों को भेज दिया, कैसे भी करके बाबा को खत्म करो, नहीं तो ये सब कन्याएं भांता इनके पीछे भाग रही हैं। उनको क्या पता कि ये तो शिव बाबा का खेल है, ब्रह्मा बाबा तो बीच में कहता है मैं तो फंस गया। तो लोगों ने बहुत कोशिश की कि बाबा को हिसाब कर दो तो काम ही पूरा हो जाएगा। तो एक बार चार सिख लोग सरदार लोग आए गए, बहनों की उस समय ड्यूटी होती थी, पहरा भाई तो नहीं देते, भाई तो बहुत कम थे यहाँ, तो बहनें ही पहरे पर थी, उनको सामने आ गए। उन्होंने कहा कि बाबा आपका कहाँ है, तो डर गई उनका रूप रंग देख करके भयानक, तो उनको बोला आप रुको बैठो मैं देखती हूँ कहाँ है। तो भाग के कोई एक बहन को भेजा, देखो बाबा कहाँ है और क्या कर रहे हैं, बताओ बाबा को ऐसे ऐसे लोग आए हैं। तो बाबा बहुत निश्चिंत स्थिति, बाबा जैसे जाने जाननहार था। बाबा कहता बच्चे आए हैं ना भेज दो, और बाबा अपनी गद्दी पर योग में बैठ गया। तो जब वो लोग आए, अंदर प्रवेश हो रहे थे, आए तो मारने के हिसाब से थे, खत्म करेंगे, लेकिन बाबा गुम हो गया और बाबा की जगह पर उनको गुरु नानक का अनुभव हो गया। कहते तो गुरु नानक जी बैठे हुए हैं, और गुरु नानक जी का दर्शन करेंगे तो क्या होगा, वो सारे के सारे लेट गए पैरों के आगे। तो बाबा तो अपने कॉन्शियस में था, बाबा को तो नहीं था कि मैं गुरु नानक बन के बैठा हूँ, बाबा तो अपने लाइट में था। तो बाबा ने कहा बच्चे उठो क्या हुआ उठो। अब बच्चे तो गुरु के दर्शन कर रहे थे, तो उठ के बैठे, बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा मुझे माफ कर दो, क्या हुआ बच्चे क्या हुआ। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, बहुत स्नेह दिया और उनको बिठाया अपने साथ। तब उन्होंने सब बता दिया कि ऐसे ऐसे मुझे किसी ने भेजा है, मारने के लिए भेजा था, लेकिन आप तो हमारे साक्षात गुरु यहाँ हैं, मेरे से बहुत भूल हुई, मुझे माफ कर दो। बाबा ने कहा बच्चे कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, कोई बात नहीं। बड़े प्यार से उसको टोली खिलाई, प्रसाद दिया और विदाई दी। ये बाबा उस समय अभ्यास करते थे, और अभी के समय अनुसार हम सबको ये बहुत गहरे अभ्यास की जरूरत है, गुप्त पुरुषार्थ करने की जरूरत है। हर एक शरीर में है, बॉडी कॉन्शियस में है हम सब, लेकिन बहुत सारे कार्य व्यवहारों में हम रहते हैं। कभी अकेले जाना पड़ता है, कभी ऑफिसेज में है, कभी कहीं है, कभी कहीं है। घर से निकलते समय एक तो बाबा ने एक नियम बनाया है कि बाबा का कमरा बनाओ, छोटा स्थान बनाओ, अगर नहीं कमरा बना सकते हो तो एक बाबा का अच्छा सा फोटो रखो, और जब कहीं कमरे से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, तो एक मिनट बाबा के सामने खड़े होकर के, जैसे बाबा से कोई डायरेक्ट छुट्टी ली जाती है, बात की जाती है, बात करके और बाबा को ऐसे साथ लो कि बाबा ये कार्य तो आपका है, जहां मैं जा रहा हूं अब आप ही मेरे साथ चलो। ये विधि अगर अपनाई तो बहुत सारी बातों से सुरक्षित हो जाएंगे। जो बाबा जब सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ है तो उन बच्चों को कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नुकसान नहीं हो सकता। हमारी दादियों ने शुरू से आज तक यज्ञ के अंदर बाबा के अव्यक्त होने के बाद एक नियम बनाया। दादी जी यहां रहती, दादी प्रकाशमणि जी, कहीं पर भी जाना हो, यहां से पीस पार्क में भी जाना हो, पहले गाड़ी आने के पहले बाबा के कमरे में जरूर जाएंगे। और कई बार दादी बाबा के कमरे में जाके बाहर आके संदेश सुनाती थी। हम कहते दादी आपको संदेशी हैं क्या, आप संदेश सुनाती? कहती नहीं, मुझे संदेशी नहीं हूं, लेकिन बाबा के नैनों से मुझे ये आभास हुआ जैसे बाबा मेरे से बात करता है, बाबा मुझे कुछ कहता है। एक दिन की प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। कहीं दादी जी को अर्जेंट बुलावा हुआ, गाड़ी आ गई, सामान सारा लोड हो गया ऊपर, और दादी लास्ट में जब बाबा के कमरे में गई और बाबा की तरफ दृष्टि ले रही थी, 5-10 मिनट बैठी और बाहर आके कहती है इस सामान उतार दो, मैं नहीं जाऊंगी। तो सबने बोला दादी अभी तो ये सब तैयारी हुई आपकी, इतनी अर्जेंट बुलावा आया है, क्यों क्या हुआ इतनी जल्दी विचार कैसे चेंज हो गए। कहती मैं बाबा के कमरे में गई तो बाबा ने मुझे आज हरी झंडी नहीं दिखाई, लाल झंडी दिखा दी, अब मैं नहीं जाऊंगी, और सारा सामान उतरवा दिया। और सचमुच जब रिजल्ट निकली, उस जहां जाना था वहां कुछ आपस के टकराव थे, बहुत ज्यादा झगड़े थे, न जाने में ही फायदा था। तो ऐसे कई बार टचिंग आती है, लेकिन किसको आएगी, जिसकी बुद्धि बहुत क्लीन साफ स्वच्छ होगी। टचिंग को कैच करने वाली आत्माएं चाहिए। बाबा तो टच करता है, कई बार कहता है मैं बच्चों को हलो हलो करता हूं, वो अपना रिसीवर ही उतार के रख देते हैं या कहीं एंगेज करके रख देते हैं, तो मैं क्या करूं। बच्चे तो सभी हैं, लेकिन अगर वो अपने बुद्धि के रिसीवर को ठीक रखते हैं, कहीं इधर उधर एंगेज नहीं करते, तो बाबा की टचिंग आती है। और उस टचिंग के आधार से अगर हम कुछ कर्म करते हैं तो उसमें सफलता ही सफलता है। इस समय के अनुसार ये गुप्त पुरुषार्थ हम सबको करना है कि हम जहां भी जाएं, कोई भी सेवा हो, लौकिक हो अलौकिक हो, सरकारी हो गैर सरकारी हो, जो भी हो, आप समझो हमें अपने साथ रक्षा कवच लेके जाना है। लाइट का कवच ही रक्षा कवच है। वो लोग सेफ्टी के लिए आजकल बुलेट गाड़ियां रखते हैं, बुलेट साधन रखते हैं। पहले थोड़े दिन पहले इस जैकेट के अंदर एक ऐसा जैकेट रखते थे बुलेट प्रूफ, कि अगर कोई गोली भी चलेगी तो अंदर नहीं लगेगी, वार नहीं होगा। बाबा ने हम सबको कोई स्थूल ऐसे साधन नहीं बताए हैं कि इनको लेकर के चलो। हम लोगों को तो कोई हथियार पवार होते नहीं, रखते भी नहीं और रखना भी नहीं है, लेकिन एक बहुत सूक्ष्म अपने लिए रक्षा कवच हरेक को तैयार करना है। है सबके पास, है कुमारियों के पास है, क्योंकि सेफ्टी के लिए रक्षा कवच लाइट का कवच है, और वो लाइट का कवच हम खुद ही निर्माण कर सकते हैं, वो है शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा। जितनी सकारात्मक श्रेष्ठ संकल्प होते हैं उतना सुंदर लाइट का कवच बनता है, घेरा बनता है, आभा मंडल बनता है। कहीं पर भी कोई जाते समय संकल्प में नेगेटिविटी न हो, युद्ध के संकल्प न हो, तेरे मेरे वाले संकल्प न हो, बड़े शांत शीतल अच्छे संकल्प लेकर के बाबा साथी कंबाइंड रहता है। मैं कह रहा था देखो चार स्वरूप हम सबके कंबाइंड हैं संगम पर ही, और चारों कंबाइंड स्वरूप अगर हम अनुभव करें तो हम सदा सेफ रह सकते हैं। गुप्त इशारे बाबा के हैं, अपने कंबाइंड स्वरूप को बढ़ाओ। एक कंबाइंड स्वरूप है मैं आत्मा और शरीर, ये अलग है मैं अलग हूं। इतना कॉन्शियस में नहीं हो जाओ जो अपने स्वरूप को ही भूल जाओ। हूं कंबाइंड लेकिन चिपका हुआ तो नहीं हूं ना, अलग हूं। आत्मा इस शरीर से अलग है लेकिन वो प्रवेश हुई है, इस चोले को पहना है, इससे डिटैच होने का जो अभ्यास करते हैं उनको अनुभव होता है मैं अलग हूं, ये अलग है। योग में भी क्या करते हो, अलग होने का अभ्यास करते हैं ना, देह और देही अलग हो जाए, इसका अलग अलग अनुभव होने लगे, यही यथार्थ योग है। ऐसे ही बातें करते रहो, रू रिहान करते रहो, संकल्प विकल्प चलाते रहो और आधा घंटा निकल जाए तो योग क्या किया। कम से कम योग में इतना तो अनुभव हो, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, मैं एक बहुत शुद्ध पवित्र लाइट हूं जो इस शरीर में प्रवेश हुई हूं। तो ये कंबाइंड स्वरूप पहला है। दूसरा बाबा कहते हैं आपके साथ बाबा कंबाइंड है, आत्मा और परमात्मा का कंबाइंड स्वरूप सदा ध्यान रहे। कई बार बाबा कहते हैं, कुछ मुरलियां कुछ समय से चली हैं, कि बच्चे दिलाराम बाबा को अपने दिल में बिठा लो। लेकिन दिलाराम दिल में तो तब बैठेगा जब कोई भी प्रकार की गंदगी नहीं होगी, स्वच्छ होगा, साफ होगा, बड़े अच्छे स्थान पर ही बिठाएंगे ना भगवान को। अगर इसमें कोई के प्रति ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा की भावना है और बाबा को बोलो बाबा आ जाओ आप हमारे दिल में, कहेगा इसमें कैसे बैठूं मैं, किचड़े में बिठाएगा क्या मेरे को। तो ध्यान देना, किसी के प्रति कोई नफरत की भावना नहीं, कोई घृणा, हर एक आत्मा निर्दोष है इस सृष्टि पर, हर एक आत्मा निर्दोष है। अब इस बात को समझना, ड्रामा के खेल के अनुसार, ड्रामा के इस खेल के अंदर कोई का दोष है क्या? कोई, हर एक आत्मा किसी न किसी रूप से अपना पार्ट प्ले कर रही है। जब हम वर्तमान को देखते हैं तो दोष दिखाई देता है, लेकिन जब हम त्रिकालदर्शी स्थिति में बैठ करके देखते हैं कि जरूर कुछ हमने भी किया होगा। एक रमणीक बात सुनाता हूं, एक बार साकार बाबा के सामने एक बच्ची आई, बोली बाबा मुझे अपनी मेरी टीचर बहुत तंग करती है, बहुत उल्टा बोलती है, बहुत काम कराती है, मैं बहुत थक जाती हूँ। बाबा बहुत प्यार से उसको मुस्कुरा के पूछने, बच्ची और क्या करती है, बच्ची और क्या करती है। वो रोते रोते अपनी सारी कहानी सुना दिया, परेशान थी। बोला बच्ची एक बात बताऊं, ख्याल नहीं करना, तुम पिछले जन्म में उसकी सासू थी, तुमने भी बहुत तंग किया था। ऐसा रमणीकता से बाबा ने उसको खेल खेल में बताया कि बच्ची कुछ तो किया था, तब तो तेरे साथ ऐसा खेल हो रहा है। अब बाबा तो त्रिकालदर्शी, वो तो जानता है, और हम सब एक काल से देखते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, फिर उसके प्रति हम नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। उसने मेरी एक गलानी की, हम उसकी 10 गाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं जानते कोई हिसाब किताब होगा, चुप तो हो रहा है, मैं क्यों फिर नया हिसाब किताब और बना लूं। अगर हिसाब किताब चुप तो हो रहा तो उसकी क्या निशानी होगी? बहुत योग अच्छा लगेगा, हल्कापन रहेगा, मन में उलझन नहीं होगी, ऐसे लगेगा जैसे कर्जा उतर गया। और अगर बन रहा होगा तो एकदम योग नहीं लगेगा, भारी भारी लगेगा, खुशी गायब हो जाएगी। बना रहे हैं हम हिसाब किताब, अभी चुप्तु होने का समय है और आत्मा हिसाब किताब बनाती रहे। ध्यान देना, जब बाबा को हम कंबाइंड रख रहे हैं तो किसी भी आत्मा को दोषी दृष्टि से न देखे, क्योंकि बाबा जब सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ हमारे साथ है, अगर कोई हमारे लिए कुछ गलत करेगा भी तो अपने आप को ठीक कर लेगा, उसकी जवाबदारी आ जाएगी। तो दूसरा कंबाइंड स्वरूप है आत्मा और परमात्मा, बाप और आप, हम और बाबा, ऐसा है ना। और तीसरा कंबाइंड स्वरूप है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, इसको बार बार इमर्ज करो। अंत में फरिश्ता बनेंगे वो तो शरीर छोड़ने के बाद तो सब बन ही जाएंगे, उसे क्या फायदा है। साकार शरीर में रह करके मैं लाइट के शरीर में रहने का अभ्यास करूं, कर्म कर रहा हूं, कर्म किया न्यारा हो गया, तो जितना हमारा न्यारापन का अभ्यास बनता जाएगा उतना हमारा फरिश्ता स्वरूप हमारे साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, इस कंबाइंड स्वरूप को अनुभव। अभी अभी ब्राह्मण है, साकार कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रहे हैं, और अभी अभी लाइट के शरीर में चले गए, लाइट के शरीर से इस शरीर के द्वारा प्रवेश होकर कर्म करा रहे हैं। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप कंबाइंड है। और चौथा एक स्वरूप और है, बड़ा विचित्र है, बाबा ने शुरू शुरू में बहनों को अभ्यास कराया था, चतुर्भुज हूं, मेल और फीमेल। हर एक के अंदर दोनों संस्कार हैं। कई बार भाई कहें भाई बहन नहीं है, ये खाना कौन बनाएगा, ये काम कौन करेगा, इसकी जरूरत है। बहने कहें हमारे सेंटर पर कोई भाई नहीं है, ये काम कैसे हो गए, तो भाइयों का काम है। और बाबा कहता है तुम दोनों में कंबाइंड हो, नर नारी नारेश्वर, अर्ध नारेश्वर बाबा को भी कहते हैं ना, वो भी कंबाइंड है। हम सभी भी दोनों संस्कार समय पर समय, किसी जन्म में मेल को चोला मिला तो किसी जन्म में फीमेल का भी मिला होगा। ऐसे इतनी माताएं हमेशा माताएं बनेंगी और भाई हमेशा भाई ही बनेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। इसमें तो परिवर्तन हो सकता है ना, भले हम दूसरे जानवरों में नहीं जाएंगे, बीज तो ये मेल आत्मा है ना, मेल है ना, वो मेल और फीमेल का चोला बदल सकती है। तो ये कंबाइंड स्वरूप बहुत जरूरी है। इस कंबाइंड स्वरूप से किसी पर आप डिपेंड नहीं होंगे कि भाई की जरूरत है, यहाँ पर ये काम भाइयों का है। जब दादियां शुरू शुरू में आई, वह भाई नहीं थे इतने, और बाबा ने गाड़ी लिया, अब गाड़ी रिपेयरिंग करनी है, कोई बाहर के मजदूर नहीं, नौकर नहीं, जूते चप्पल टूट गए, सिलाई करनी है, कपड़े सिलाई करने हैं, बड़े बड़े 400 लोगों का भोजन बनता था, बड़े बड़े डेगरे उनको मांझना है, साफ करना है, दादियों को बाबा कहता था, अरे तुम चतुर्भुज हो, क्यों भाइयों पर डिपेंड करती हो, कहां से भाई आएंगे, तुमको ही करना है। ऐसा पक्का करा दिया जो उन्होंने कहा ही नहीं कि मैं नहीं कर सकती, मेल का भाइयों का काम है। तो हम सब जिस क्षेत्र पर रहते हैं इस कंबाइंड स्वरूप को ध्यान रखो, बार बार याद करो कि हमारे अंदर दोनों संस्कार हैं, और ये भी कर सकता हूं, भोजन भी बना सकता हूं, सब काम कर सकता हूं। तो अगर कोई सेवा आती है तो उसमें ये कंबाइंड स्वरूप बहुत मदद करता है। तो ये चारों कंबाइंड स्वरूप अगर हम स्मृति में रखते हैं तो बहुत हल्के रहते हैं, कोई पर भी कोई बंधन कोई बोझ महसूस नहीं होता। तो बाबा की जो गुप्त प्रेरणाएं हैं, कुछ समय पहले एक मुरली चली थी, मैं साहट में सुनाऊंगा, अव्यक्त बाबा की मुरली थी। समय अनुसार चार प्रकार की लहर होनी चाहिए, चार प्रकार की लहर होनी चाहिए। आजकल की एक लहर है सहज योगी जीवन की, और सहज योगी जीवन में शायद सहज है, बैठते योग में गर्दन ऐसे झुका के जैसे बैठे वैसे बैठे हुए हैं, अलबेले हैं, सहज है ना। बाबा ने कहा इस लहर को परिवर्तन करो, सहज तो है, सहज होना भी चाहिए, बाबा को याद कर रहे हो, लेकिन सहज योगी नहीं श्रेष्ठ योगी हो, बहुत श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचा योग किसके साथ कर रहे हैं। कम से कम सोमान में बैठ करके, उस नशे में बैठ करके भगवान से डायरेक्ट बातें करना, उनसे मिलन मनाना, ये कोई कम बात है क्या, साधारण बात है क्या। इसलिए इसको सहज नहीं कहो, बहुत श्रेष्ठते श्रेष्ठ योग, परमात्मा और आत्मा का मिलन हो रहा है, उसमें शक्तियों का ट्रांसफर हो रहा है, वरदान मिल रहे हैं, दुआएं मिल रही हैं, बहुत श्रेष्ठ योगी हैं हम सब। इसलिए जब भी योग करो तो ऐसा जैसे बाबा कहते हैं ना, शेर बैठा हुआ ऐसे झुक करके ऐसे नहीं बैठो, बहुत अलर्ट होकर के तपस्या करो। आज हमने सवेरे 2 बजे एक योग रखा था, एक ग्रुप का 60 भाई आते हैं, 60 भाइयों का ग्रुप था, मैंने रात को क्लास कराया उनका। मैंने देखो अगर कोई भी ऐसे बैठेगा तो मैं उसको उठवा दूंगा, बैठेंगे हम 3.5 घंटा 3.5 घंटा, लेकिन एक को भी नींद नहीं आनी चाहिए, तब तो योग कराऊंगा मैं। और 2:05 के बाद गेट के अंदर कोई नहीं घुसेगा, और जब मैं कहूंगा तब उठ जाना भले। 2 से 3 घंटा एक प्रकार की ड्रिल, एक जैसी स्थिति में बैठ जाओ। मैंने उनको 3 आसन दिए, 3 आसन। योगी को आसन की बहुत जरूरत होती, बिना आसन के तपस्या नहीं होती। हर तपस्वी के आगे साथ में आसन रहता, आसनी पर बैठता है फिर योग कर तपस्या करता है। और बाबा ने हम सबको इतना श्रेष्ठ आसन दिया है, अकाल तख्त आसन भी है, कुटिया भी है, इस कुटिया पर बैठ करके तपस्या करो। श्रेष्ठ योगी हूं, महातपस्वी हूं, दो लहरें, श्रेष्ठ योगी महातपस्वी। तपस्वी बन करके बैठेंगे तो अकाल तख्त नसीन, अकाल स्थिति का आसन इस पर बैठो, इस देह से अलग होकर के इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। दूसरा आसन है अभ्यास करना, आप लोग अभी 3 दिन है ना भट्टी में, साक्षी दृष्टा स्थिति का अभ्यास, वो भी आसन है, साक्षी दृष्टा स्थिति का आसन। व्यवहारिक जीवन में साक्षी दृष्टा बनना अलग बात है, आप जहां जहां कर्म कर रहे हैं कर्म क्षेत्र पर, वहां अगर साक्षी दृष्टा होकर के रहेंगे तो कभी भी उसमें दुख सुख का अनुभव नहीं करेंगे, लिप्त नहीं होंगे, फंसेंगे नहीं, वहां जरूरी है व्यवहारिक जीवन में साक्षी दृष्टा स्थिति। लेकिन योग अभ्यास के अंदर साक्षी दृष्टा आत्मा न्यारे बन करके अपने चलते हुए श्वास को, अपने चलते हुए संकल्पों को, अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को, अपनी सूक्ष्म भावनाओं को चेक करें, साक्षी दृष्टा होकर के कई लोग अपने को महसूस ही नहीं करते कि मैं गलत हूं, मेरे अंदर कोई संस्कार है, मेरी कोई कमी है, कोई कमजोरी है। लोग उससे तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन वो खुद नहीं महसूस कर पा रहा है कि मेरी क्या गलती है, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। जब तक आत्मा साक्षी दृष्टा स्थिति के आसन पर बैठ करके अपने आप को नहीं देखेगी तब तक वो महसूस नहीं कर सकती। हमारी दादी जी एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते थे, दादी प्रकाशमणि की बात सुनाता हूं मैं। एक दिन दादी बैठी थी, आंख बंद करके ऐसे बैठ जाती थी, मैं गया हाथ हिलाया बाजू में बैठ करके, दादी क्या है, आप क्या पुरुषार्थ करती हो लास्ट दिनों में, 2-3 साल तक ऐसे मैंने हाथ हिला, दादी आप क्या पुरुषार्थ करती हो, बताऊं? हाँ दादी बताओ। कहती है आत्मा बहुत सूक्ष्म हीरा है, चमकता हुआ डायमंड है, और मैं इस डायमंड को ऐसे हथेली पर निकाल के रखती हूं, ऐसे मेरे आगे हाथ किया, और उस डायमंड के चारों ओर मैं साक्षी दृष्टा बनकर के देखती हूं, इस आत्मा रूपी डायमंड में कोई भी दाग तो नहीं है, चारों तरफ से देखती हूं, ये कितना वैल्यूबल डायमंड है। और जब चारों तरफ नजर घुमाती हूं तो बाबा ऊपर से मुस्कुराता है, बच्ची ये डायमंड बिल्कुल गोल्ड, बिल्कुल प्योर हो गया है, ऐसे मुस्कुरा के मेरे को बोली। बाबा कहता बच्ची बिल्कुल प्योर हो गया है, डायमंड बिल्कुल शुद्ध है। कभी ऐसा पुरुषार्थ किया आप लोगों ने, आत्मा रूपी डायमंड पर किस प्रकार का दाग है? क्यों, वैल्यू तो कम हो रही दाग से ना, हीरे की वैल्यू कैसे कम होती, उस हीरे को तो दाग निकालना बड़ा मेहनत है, निकलता ही नहीं है, उसको काटना पड़ता है, बहुत छोटा कर देना पड़ता है। आत्मा रूपी दाग अगर हीरे पर कोई दाग है तो उसको तो निकाला जा सकता है, अगर महसूस किया तो। ईर्ष्या का, द्वेष का, आवेश का, आवेग का, बदला लेने का, काम की वासनाओं का, कोई भी प्रकार का दाग जो मेरे डायमंड की वैल्यू को कम कर रहा है, साक्षी दृष्टा होकर के इस आसन पर बैठ करके योग, ऐसा नहीं करो सिर्फ मैं आत्मा और परमात्मा है बस मिलन मना लिया चले गए, परिवर्तन कुछ नहीं आया, 7-3 दिन आए, इतना खर्चा किया, इतना समय निकाला अपनी नौकरी और धंधे से निकाल के यहाँ आए, और 3 दिन हाँ बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। क्या अच्छा था, क्रोध तो गया ही नहीं, वो आदतें जो थी वैसी की वैसी रह गई, वही संस्कार अभी तक चल रहे हैं, वही एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है थोड़े दिन उसका नशा रहता है 10 दिन 15 दिन और फिर वैसे की वैसे ही, क्या फायदा है भट्टी करने का। तपस्या किया जाए तो सचमुच मेरा कोई भी ऐसा सूक्ष्म दाग है वो निकल जाए, लेकिन उसके लिए आपको साक्षी दृष्टा स्थिति के आसन पर बैठना होगा, और उसमें बहुत सूक्ष्म वृत्तियां बड़ी चंचल हैं। संकल्प तो चलो कंट्रोल कर लेते, संकल्पों को चेंज कर लेते, ठीक नहीं संकल्प छोड़ो अभी यहां नहीं करना, लेकिन संकल्प जो बार बार चलते हैं उसके सूक्ष्म वृत्तियां बन गई हैं, वृत्तियां दृष्टिकोण के अंदर आ गई, और बार बार अंदर अंदर यहां योग कर रहे हैं और वृत्ति जा रही किसी देहधारी में, किसी संबंध में, किसी पदार्थ में, किसी खाने पीने की वस्तु में, कोई घूमने फिरने की जगह पर, वृत्तियां बड़ी चंचल हैं, वृत्तियों को इतनी सहज कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसके लिए व्रत लेना पड़ता है, प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, मरेंगे मिटेंगे लेकिन उस संकल्प को आने नहीं देंगे, वृत्ति में भी वो बात न उठे तब परिवर्तन आता है। अब उसके लिए आप एकांत में बैठो, एकाग्रचित हो जाओ, अपने हीरे को देखो, कहां कहां ये सूक्ष्म वृत्तियां जाती हैं, किन भावनाओं के आधार से भटकती हैं, कहां पर किसमें लगाव है, झुकाव है, प्रभाव है, दबाव है, किस कारण से भटक रहे हैं, क्या चाहिए आत्मा को, कौन सी इच्छाएं ममताएं रही हुई हैं जो भटक रही हैं, हम सब चेक करो। चेक करोगे चेंज करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तो दूसरा आसन है साक्षी दृष्टा स्थिति, और तीसरा आसन है एक रस स्थिति, एक बाबा दूसरा न कोई, एक वृत्ता, तपस्या है ये, सब रस तेरे से लेना है, कोई देहधारी से मुझे नहीं चाहिए। संगम पर बाबा के साथ सब रसनाएं मिल सकती हैं। नहीं, कल बाबा कह रहे थे अगर तुम सखा बनाना तो मैं बन जाता हूँ, बाप बनाना तो बन जाता हूँ, पति बनाना तो बन जाता हूँ। बाबा तो गोल गोल है ना बिंदु, उसको जो बनाना चाहो बन जाता है। हम बाबा से सर्व संबंधों के रस लेकर के एक रस स्थिति बना सकते हैं। और अगर दैहिक रसों में बुद्धि अटकी है, लटकी है, तो रस खींच रहे हैं, एक रस स्थिति नहीं बन सकती। तो बाबा से सब रस लेकर के एक रस स्थिति में रहो, तपस्वी जीवन बन जाएगी। तो श्रेष्ठ योगी की लहर, महातपस्वी की लहर, और साथ साथ अब समय अनुसार संगठन में रूहानियत की लहर फैलनी चाहिए। हंसी मजाक बोल चाल बहुत तेरा मेरा, ये सेवा वो सेवा, बाबा कहता बहुत कर लिया तुमने सेवाएं, ठीक है करो जरूर, फ्री तो नहीं रहना, लेकिन तेरे मेरे की जो हदें बना के रखी है, लड़ाई झगड़े तेरा मेरा, जब तक इससे मुक्त नहीं हुए तब तक बाबा प्रसन्न नहीं होगा, करते रहो। इसलिए हदों से निकल करके बेहद में आकर के एकदम रूहानियत की लहर बन जाए। रूहानियत की लहर में कोई भी जिस्मानी लेन देन नहीं, कोई भी व्यक्त वातावरण नहीं, आत्मा को देखना है, नियत में आत्मा को देखने का अभ्यास करना। और चौथी अब समय की पुकार है, साक्षात्कार की लहर शुरू होनी चाहिए। साक्षात्कार के बिना प्रत्यक्षता नहीं होगी। स्थापना भी साक्षात्कार से ही शुरू हुई, और विनाश के समय बाबा की प्रत्यक्षता भी साक्षात्कार से होगी। और बाबा उसके लिए अपने बच्चों को कहता है, बच्चे आप साक्षात स्वरूप बन जाओ, जैसा बाबा ऐसा बन लो, आपके चेहरे से, आपके चलन से, आपकी दृष्टि से, आपके बोल से बाबा दिखाई देने लगे, साक्षात्कार हो जाए, बाबा मैं हो जाओ। अब ये साक्षात्कार की लहर चलनी चाहिए। अभी भी मैंने कई स्थानों पर सुना है ब्रह्मा बाबा के ही साक्षात्कार हो रहे हैं, बच्चों के अभी तक नहीं हो रहे हैं। अभी भी ब्रह्मा बाबा अपना कार्य कर रहा है। अभी अभी मैं गुजरात में एक जगह गया था, चार पांच दिन पहले, एक साल का एक युगल आता है ज्ञान में, पक्का बाबा का निश्चय बुद्धि बच्चा निकला है, एक साल ही हुआ है। कहता है, भाई तो आया ज्ञान में, कोर्स लिया, निश्चय बुद्धि हो गया, चलने लगा, लेकिन बहन थोड़ी ठंडी थी, ढीली थी, सवेरे जब उठने का समय होता था कहती तुम जाओ ना क्लास करके आओ, मैं नहीं जाती, मेरे को सोने दो। तो रोज कहता था चलो मुरली सुनो। कहती एक दिन मैं सोई थी, बाबा पीछे आके खड़ा हो गया, कहता बच्ची स्कूल का टाइम हो गया, उठ जा, बाबा बुला रहा है, चल। कहती मुझे उस समय तक बाबा में विश्वास नहीं था, निश्चय नहीं था, लेकिन जब बाबा ने मुझे सोने नहीं दिया, पीछे से मैं देख रही हूँ कौन कह रहा है चल बच्ची स्कूल का टाइम हो गया, और मैं जब सेंटर पर उठ करके आ गई उसी रूप में तैयार होके फटाफट, तो साकार में ब्रह्मा बाबा के कमरे में गई तो ऐसे मुस्कुरा रहा था, आ गई बच्ची आ गई। अभी तक भी ब्रह्मा बाबा अपना खेल कर रहा है साक्षात्कार कराने का। अब चाहता ये सब मेरे बच्चे साक्षात्कार मूर्त बन जाए, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। जब तक हदों में फंसे हुए हैं, इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं, जब तक हम सब बातों से न्यारे और प्यारे नहीं बने हैं, तब तक साक्षात्कार कैसे होगा? और साक्षात्कार नहीं होगा तो प्रत्यक्षता नहीं होगी, चाहे जितने भाषण कर लें, चाहे जितनी डेलियां निकाल लें, चाहे जितने प्रोग्राम कर लें। इसके लिए हम सबको अपनी आत्मिक स्थिति को बढ़ाना है, रूहानियत में रहना है, श्रेष्ठ योगी जीवन में रहना है, महातपस्वी बनकर के रहना है, तब साक्षात्कार की लहर होगी और बाबा की प्रत्यक्षता होगी। प्रत्यक्षता, पश्चाताप और परिवर्तन, ये तीनों चीजें साथ साथ होने वाली हैं। विनाश के पहले प्रत्यक्षता होगी, जय जयकार होगी, भगवान इस सृष्टि पर आया है, लेने के लिए आया है। लेकिन जिन्होंने पहचान करके अलवे ले रहे, वो पश्चाताप के आंसू जरूर बहाएंगे। अरे हमने तो इतना सब बताया गया, इतना पढ़ाया गया, मैंने पहचाना ही नहीं, मैंने उनकी आज्ञा को पालन नहीं किया, मैंने श्रीमत नहीं मानी, वो तो पश्चाताप करेंगे। जिन्हों को मिला और नहीं माने, समझे नहीं, उनकी बात अलग है, लेकिन जो बच्चे बन करके अलवे ले रहे, वो बहुत पश्चाताप करेंगे। लेकिन बाबा कहता है मैं बच्चों का पश्चाताप भी नहीं देख सकता, विनाश हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ये तीनों चीजें साथ साथ होने वाली है। तो अब समय है, ये बाबा की गुप्त सारे मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत जल्दी सीन हम सबके सामने आएगी, साक्षात्कार की लहर शुरू होगी, प्रत्यक्षता होगी, जय जयकार होगी। और साथ साथ अगर हम कोई कारण से अलवे ले रहे, पुरुषार्थ नहीं किया, श्रीमत की अवज्ञाएं की, तो पश्चाताप करना पड़ेगा, फिर परिवर्तन होगा, विनाश होगा। तो हम सब तैयार हैं, एवर रेडी। तो चलो अभी हम सब 5 मिनट के लिए तो शरीरी स्थिति में बैठ जाएं, डिटैच हो जाओ शरीर से, देह और देही का अलग अलग अनुभव करो। इस भ्रकुटी आसन पर चमकता हुआ मैं दिव्य सितारा, अपने स्वस्वरूप को देखो, स्वधर्म का अनुभव करो, शांति प्रेम मुझ आत्मा का निज धर्म है। अपने निज स्वरूप में स्थित होकर, अपने बुद्धि के विमान से निज देश का अनुभव करो। हम सब का निज देश परम धाम, स्वीट होम, मूल वतन, जहां हम सब का अति प्यारा बाबा ज्ञान सूर्य रूप में अपनी सर्व शक्तियों की किरणों द्वारा हम सब का आह्वान कर रहे हैं।
उड़ो